Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Us samasti, us vibhu, yovai bhuma tat sukham us bhuma ko. कोई भी, चाहे व्यष्टि उपाधि वाला हो, चाहे समष्टि उपाधि वाला हो, चाहे कार्य उपाधि वाला हो, चाहे कारण उपाधि वाला हो, इनमें से कोई भी उसको ना ऊपर से पकड़ सकता है कि मैंने ऊपर से ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, ना ऊपर से ना नीचे से पकड़ सकता है कि मैंने नीचे से उसको जान लिया, परिच्छिन्न किया, जान लिया, वृत्ति ज्ञान का विषय बनाया, फलव्यक्ति का विषय बनाया, ना ऊपर से तुम उसको फलव्यक्ति का विषय बना सकते हो, ना नीचे से उसको फलव्यक्ति का विषय बना सकते हो, ना मध्य में उसको फलव्यक्ति का विषय बना सकते हो, वह समष्टि फलव्यक्ति का भी विषय नहीं हो सकता और व्यष्टि फलव्यक्ति का भी विषय नहीं हो सकता है। ये श्रुति ने कहा, क्योंकि जहां किसी भी फल व्याप्ति का विषय हो गया कि वह फिर परिच्छिन्न हो जाएगा, वह परिच्छिन्न कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए वह नयन मूर्धम न तीर्यम च न मध्ये परिजग्रवत न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा शब्द का अर्थ होता है उसकी प्रतीक, उसके प्रतिनिधि करने वाला, प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति को समान अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार होता है। प्रतिनिधि करने वाले को पूर्ण अधिकार होता है। जैसे किसी विदेश में कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अनेक देश के राष्ट्राध्यक्षों का वहां कोई सम्मेलन हो रहा हो, नियमानुसार इस देश का भी राष्ट्राध्यक्ष ही वहां जाना चाहिए, प्रधानमंत्री ही जाना चाहिए, क्योंकि सभी प्रधान देश के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है तो इस देश का भी प्रधानमंत्री को ही जाना चाहिए। संयोग से वह प्रधानमंत्री जा नहीं पाया तो प्रधानमंत्री अपने पूरे अधिकार को देखकर अपना प्रतिनिधि भेजता है और वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं और मैं उस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो कर रहा हूं, मैं इस सभा में उस राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हूं, जो इसमें निर्णय होगा उस निर्णय में जो कुछ भी कहना होगा प्रतिनिधि के, प्रधानमंत्री के तरफ से मैं कहने वाला हूं, उस राष्ट्र के तरफ से मैं कहने वाला हूं और जो कुछ भी साइन करना होगा जहां भी राष्ट्र की तरफ से मैं साइन करूंगा, तो वो पूरी अथॉरिटी उसके पास होती है। ये प्रतिनिधि का यही तो नियम है। तब ये हुआ कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, यानी वो जिस स्वरूप का है, जिस अधिकार का है, जैसे क्षमता वाला है, जैसे शक्ति वाला है, उसके पूर्ण शक्ति को लेकर यहां उसका अल्टरनेट, उसका विकल्प यहां दूसरा नहीं है। वह यदि सर्वज्ञ है परमात्मा तो उसने अपना प्रतिनिधि सर्वज्ञ दूसरा को बनाया ही नहीं है। उसका अपना पूरा अधिकार है, वीटो है। यदि सर्वकर्ता है तो अपने अलावा दूसरे को, किसी को सर्वकर्ता बनाया ही नहीं है। यदि वह सर्वज्ञ है तो दूसरे सर्वज्ञ को नहीं मिला, नहीं बनाया है। वह शुरू में भी सर्वज्ञ था, आज भी सर्वज्ञ है। शुरू में भी सर्व शक्ति वाला था, आज भी सर्वशक्ति वाला है, आगे भी सर्वशक्ति रहेगा, आगे भी सर्वज्ञ रहेगा। अपना विकल्प उसने जगत में नहीं बनाया है दूसरा। परमात्मा का विकल्प क्या होगा जगत में, बोलो? परमात्मा का विकल्प जगत में क्या हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता है। परमात्मा के विकल्प है ही नहीं है। आत्मा का विकल्प जगत में क्या हो सकता है? या संसार में तो सब विकल्प खोज रहे हैं, हर चीज का विकल्प, हर चीज का अल्टरनेट है। पहले गाय और भैंस के दूध से हमारा गुजारा चलता था, हम लोगों का जीवन यापन चलता था। आजकल गाय दूध के और भैंस के दूध के भी अल्टरनेट खोज लिए, विकल्प खोज लिए, सिंथेटिक मिल्क तैयार हो गया, हुआ कि नहीं बोलो, है? सिंथेटिक मिल्क बन गया कि नहीं, केमिकल का दूध तैयार हुआ कि नहीं, बन गया। अब आजकल जो है रक्त का भी वो सिंथेटिक है, केमिकल का जो है रक्त बनाने लगे, ब्लड बनाने लग गए हैं, हृदय का विकल्प खोज लिया गया है, पेसमेकर लगा देते हैं तो हृदय चलाता रहता है, पहले प्राण उसको चलाता था, अब जिस नाड़ी से उस प्राण को जाकर हृदय को पंपिंग करना था वह नाड़ी तो ब्लॉक हो गया, वह स्नायु तंत्र तो ब्लॉक हो गया, तो वहां से हवा शरीर के प्राण जाकर उस पंप को यानी हृदय को स्पंदित कर नहीं पा रहा था, तो वहां बैटरी लगा के मशीन लग दिया, अब वो अब हृदय को पंप कर रहा है। अभी तो विज्ञान जो है हृदय का भी विकल्प खोज लिया है, हार्ट जो है मनुष्य की जगह दूसरे का लगाकर हार्ट प्लांटेशन हो गया। ओपन हार्ट सर्जरी में जो हृदय परिवर्तन करते हैं वो धमनी, हमको किसी डॉक्टर ने बताया था कि ये 6 दिन के गाय के बच्चे का हृदय हो मनुष्यों को लगाया जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट में, 6 दिन के गाय के बच्चे के हृदय को मनुष्य में जोड़ा जाता है, और वो मनुष्य उसके अपने हृदय खराब हो गया तो उसके हृदय से वो जीता है। सब कुछ का अल्टरनेट खोज लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद चैतन्य का विकल्प खोजना बड़ा मुश्किल ही होगा और संभव भी नहीं होगा, क्योंकि एक चैतन्य है, चैतन्य ये कि एक के अलावा दूसरा है नहीं, इसीलिए दूसरा चैतन्य खोजना संभव नहीं, चैतन्य का विकल्प जड़ होगा फिर वह चैतन्य नहीं होगा। तब इतना ही होगा, विज्ञान अभी रोबोट बना चुका है, सारी मनुष्य का विकल्प को तैयार कर रहा है, वो भात भी पका देगा, घर की सफाई भी कर देगा, आपके टेलीफोन को रिसीव कर लेगा, घर के सारा काम कर लेगा, वो फौज में भर्ती होकर वो बंदूक भी चला लेगा, सीमा की रक्षा भी कर लेगा, रोबोट सब कर लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपके हृदय को समझ नहीं पाएगा, आपकी भावना को नहीं समझ पाएगा, आपकी प्रार्थना को नहीं समझ पाएगा। आप जब जब कभी भी किसी भी समस्या से ग्रसित होकर पीड़ित हो रहे हो, उस समय में उस पीड़ा के चलते आप किसी के प्रार्थना करने लगो, तो उस समय रोबोट के सामने जाकर प्रार्थना कर लो, तो शायद मुझे लगता है रोबोट आपकी भाषा नहीं समझ पाएगा, उसको जो समझाया गया है पहले उतना तो समझेगा, और उसको जो नहीं समझाया गया है वह समझ नहीं पाएगा। तो यह है, आत्मा का कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए कहा कि नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई विकल्प नहीं है, ब्रह्म का विकल्प ब्रह्म ही है, ब्रह्म का विकल्प और कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसको कोई पकड़ नहीं सकता। यस्य नाम महद्यसः, जिसका नाम माने अभिधान, जिसको बार बार उपनिषद ने इस नाम से संबोधन किया है, हालांकि उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई भी नाम नहीं है, जो भी नाम आप उसके बारे में कहोगे वह केवल कल्पना मात्र होगी, वह नाम आरोप मात्र होगा। ब्रह्म को यदि तुम ब्रह्म कहते हो तो वह ब्रह्म ये जो नाम है वह आरोप मात्र है, वास्तव में ब्रह्म का नाम ही नहीं है। परमात्मा को यदि तुम शब्द से परमात्मा ये नाम देते हो तो ये गलत है, क्योंकि उसका नाम परमात्मा नहीं है, वो जो है वो सो है, बस जो है तो वो सो है, सो है, इसी कारण से हमारे ऋषियों ने कहा उसको सोहम के रूप में तुम अनुभव कर सकते हो, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं उसको अनुभव करने का। अनुभव कर सकते हो, उसके नाम भी काल्पनिक हैं, उसके रूप भी काल्पनिक हैं, और उस अनुभव को यदि तुम शब्द से व्याख्या करने लग जाओगे तो वह शब्द भी काल्पनिक होगा, उसकी सही व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि वह जो सोहम है वह किसी शब्दों में बंधने वाला तत्व नहीं है। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। यस्य नाम महादेश, उसके चारों तरफ यश है, कीर्ति है, यानी वह सर्वव्यापक के रूप में उसकी प्रसिद्धि है, सर्वज्ञ के रूप में उसकी प्रसिद्धि है, सर्वकर्ता के रूप में उसकी प्रसिद्धि है, और संकल्प शुद्ध संकल्प के रूप में उसकी प्रसिद्धि है। उस प्रसिद्धि को ही यहां उस परमात्मा का महान यश है, उस यश ही उसका अभिधान है, यानी उसके बारे में इसी रूप से कुछ कहा जा सकता है, अन्यथा उसके बारे में कुछ कहने का और कोई उपाय नहीं है। पुराणों में आप समझते हैं, सुने हैं कई बार, विशेष करके शिव पुराण आदि में शिवरात्रि व्रत कथा के प्रसंग में ये बात कही जाती है, और उसको पुष्पदंताचार्य ने शिव महिमा स्तोत्र में भगवान शिव की महिमा के बारे में कहा। एक समय की बात है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कमलनाभ ब्रह्मा और भगवान विष्णु पालनकर्ता विष्णु, ब्रह्मा जी तो कमल के फूल में बैठे हुए थे और विष्णु जल के अंदर शेष नाग में शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी को एक बार मोह आया सृष्टि के आरंभ में, उन्होंने विचार किया कि मैं अकेले इस कमल के फूल के अंदर आया हूं, कहां से आया हूं, मैं को हूं, मैं किस लिए आया हूं, और ये कमल का फूल कहां से पैदा, किसके आधार में टिका हुआ है, ये सब बात का पता लगाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने विचार करके वही कमल फूल के नाल के माध्यम से नीचे उतरने लग गए, और धीरे धीरे जब नीचे पहुंचे तो एक शेष नाग के ऊपर आराम से शयन कर रहे थे विष्णु जी। उन्होंने देखा कि कमल और कमल का फूल और कमल का संबंध इसके नाभि से है, ये दूसरा व्यक्ति यहां कहां से आ गया। तो उनको ब्रह्मा को थोड़ा सा घमंड हुआ, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहला मैं हूं, इसलिए मैं प्रथम अजा हूं, प्रथम शरीर ही हूं, मेरे अलावा और कोई दूसरा पुरुष नहीं, यदि हैं तो सब छोटे हैं, मैं सबसे बड़ा हूं। बड़ा होने के नाते ये खड़े होकर उठकर मेरा अभिवादन क्यों नहीं करता है, सबसे पहले मेरा अभिवादन करना चाहिए। एकदम खड़ा होकर अटेंशन में अगर आइए ब्रह्मा जी आइए पिताजी, तो हाथ जोड़ते हुए स्वागत सत्कार करने में प्रवृत्त होना चाहिए। ये तो ऐसा है कि वो आराम से मक्क बैठा सो रहा है, कैसा उद्दंड है भाई, इसको दंड देना चाहिए, क्योंकि उसका जन्म है, ये तो मेरे आसन से जन्म हुआ, पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ? ब्रह्मा जी का जो आसन है कमल, उस कमल के साथ उस बच्चे का नाभि जुड़ा हुआ है। किसका? उस बच्चे का, विष्णु का। और जिसके साथ नाभि जुड़ा होगा वही ना वो उससे पैदा हुआ होगा। तो ये मेरे कमल माने आसन से पैदा हुआ है ये, और मेरे को अभिवादन नहीं करता, नमस्कार नहीं करता, कैसा उद्दंड है ये। ब्रह्मा जी ने तुरंत उसको डांटा, अरे मूर्ख, कैसा घमंड, कैसा मूर्ख की तरह तू सो रहा है, खड़े होना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू मूर्ख तो तू हो, मैं नहीं। विष्णु जी ने कहा मूर्ख तू हो, तो मेरे नाभि से उत्पन्न हुआ कमल और कमल के अंदर कीड़े की तरह तू पैदा हुआ है, और तुझे मैं अभिवादन करूं, नमस्कार करूं, तेरा बाप तो मैं हूं, आते ही नमस्कार करना चाहिए और बिना नमस्कार किए खड़ा है ठूठे की तरह। दंड तो तुमको देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे दंड तुमको देना चाहिए, सो रहा है लकड़ी की तरह। दोनों में आपस में कौन बड़ा और कौन छोटा, किसको किसने अभिवादन करना है, दोनों अहम ज्येष्ठ अहम श्रेष्ठ अहम ज्येष्ठ अहम श्रेष्ठ का विवाद हो गया। दोनों के बीच में जब विवाद हुआ तो निर्णय करना चाहिए। भगवान शिवा समाधि में थे, विवाद इन दोनों की यहां तक हो गई, दोनों ने हथियार उठा लिए। शिव महिमा स्तोत्र में पुराणों में इसका प्रसंग है, दोनों ने हथियार उठा लिए। यहां तक कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, प्रयोग कर दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, दोनों अस्त्र अंतरिक्ष में जाकर टकरा गए। और जब वो दोनों अस्त्र टकरा गए तो भगवान शिव ने विचार किया कि ये दोनों का विवाद चरम में जा रहा है, ये पालन करने के लिए पैदा हुए थे, पालन करना छोड़कर झगड़ा करने लग गए, सृष्टि करने के लिए पैदा हुए थे तो सृष्टि करना छोड़कर झगड़ा करने लग गए। ये झगड़े का कारण है अहंकार घमंड। अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक न पालन करने वाला ठीक से पालन करेगा, न सृष्टि करने वाला ठीक से सृष्टि करेगा। अहंकार समाप्त जब तक नहीं होगा व्यवस्था ठीक से नहीं होती है। जहां भी किसी भी व्यवस्था में गड़बड़ी आती है कब, जब उस कर्ता कर्म में अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। भगवान शिवा ने विचार किया कि इनको सबक सिखाना चाहिए और पता चल जाए कि कौन सबसे बड़ा है। तो जैसे दो अस्त्र टकराए उसके अंदर जो चिंगारी हुई वही चिंगारी के ही निमित्त बनाकर भगवान शिव ने अपने तेजोमय ज्योतिर्मय एक ज्वाला, एक अनलस्कंद बपु, एक ज्योति प्रकट कर दिया। वो दोनों के बीच में एकदम ज्योति प्रकट हुआ, खंभा प्रकट हुआ और दोनों के अस्त्र उसी में जाकर विलीन हो गए, गायब हो गए, कहां गए कहां गए। तब दोनों को आश्चर्य लगा कि हमने जो अस्त्र छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र सुदर्शन चक्र, ये कहां से क्या प्रकट आया हुआ आया ये तेज पुंज, और इसमें जाकर ये गायब हो गए हमारे अस्त्र शस्त्र, ये क्या है। पहले तो इसको पता लगाना चाहिए कि ये क्या है और हमारे अस्त्र को इसने कैसे गायब कर दिया है, क्योंकि अपना अस्त्र पता लगाना ही निकालना तो आई है। इन अस्त्रों के बिना तो न ब्रह्मा ब्रह्मा है न विष्णु विष्णु है। तो दोनों ने एक संधि कर ली, समझौता कर लिया, थोड़े दिन के लिए युद्ध विराम करते हैं, पहले दोनों मिलकर ये जो स्तंभ है इसका पता लगाते हैं और अपने अस्त्रों को खोजकर निकालते हैं, फिर बाद में जब लड़ाई करना होगा तो अस्त्र आएगा तो फिर लड़ाई करेंगे। पहले तो इसका आदि अंत का पता लगाएंगे कि है क्या चीज, कहां से शुरू हुआ कहां पहुंचा है। तो युद्ध विराम के समझौता हो गए तो दोनों के बीच में युद्ध विराम हो गया। तो कहा कि ऊपर की तरफ कौन जाएगा, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हम पहले से ही ऊपर ही हैं, पानी के ऊपर हैं, तो हम ऊपर जाने में बहुत माहिर हैं, तो कैसे जाओगे तुम। अरे हमारे पास है हंस है, एक पक्षी है, उसके ऊपर चढ़ेंगे और हम चले जाएंगे। नीचे कौन जाएगा, तो बोले विष्णु ने कहा कि हम पहले से ही माहिर हैं नीचे जाने के लिए, बराह रूप बनाकर पृथ्वी को खोजने के लिए गए ही थे नीचे, हमको नीचे का रास्ता हमने देखा है, नीचे जाने के लिए हम माहिर हैं, ऊपर जाने के लिए ब्रह्मा जी माहिर हैं। चलो समझौता हो गया, नीचे तुम जाओ, कहां से ये शुरू हुआ है पता लगा कराओ, ऊपर हम जाते हैं, ये कहां से शुरू कहां अंत हुआ है उसका पता लगा कर आते हैं, और सबसे पहले अंत और आदि का जो पता लगाकर यहां आएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा, जो बाद में आएगा वो छोटा कहलाएगा। तो ये शर्त उनके बीच में हो गई, ब्रह्मा भी गए विष्णु भी गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाए जाते हैं कहां, अनंत अनंत अनंत, जितने ऊपर जाओ उतने और आगे है, जितने ऊपर जाओ उतने और आगे जाता है, उतने ही आगे है उसकी महिमा। बचपन में हम लोग खेलते थे सायंकाल में पहाड़ में, इस शरीर का जन्म हुआ पहाड़ से, देखते थे तो सूर्य अस्त होने के समय में तो ऐसा लगता था कि कुछ दूर आगे जाओगे तो उस सूर्य को पकड़ सकते हैं, पृथ्वी के साथ वो सूर्य जुड़ा हुआ है, लेकिन वो केवल भ्रांति मात्र है, क्योंकि जितने आगे जाओगे सूर्य उसी तरह दिखता जाएगा, लगेगा कि पृथ्वी से जुड़ा है। तो हम कहते थे कि देखो आकाश और पृथ्वी वहां जुड़ा हुआ है, वहां पहुंचेंगे तो दोनों ही मिल जाएगा, आकाश और पृथ्वी, जबकि ये खाली भ्रांति है। ब्रह्मा जी को लगा ये बहुत दिन हो गया इतने जा रहे हैं, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, कहीं हमसे पहले वो पहुंच गया तो बड़ा हो जाएगा, उसको फिर नमस्कार करना पड़ेगा, ऐसा करो यहीं से वापस हो जाते हैं और उसके पहुंचने से पहले हम पहुंच जाएंगे तो हम बड़े रहेंगे, लेकिन अंत का पता लगाकर पहुंचना कहा है वो तो संभव नहीं है ऐसा लगता है, इसलिए यहीं से वापस होते हैं। तो ब्रह्मा जी वहीं से वापस हो गए। बीच में शंका हुई, शंका उपशंका हुई, यदि कदाचित साक्षी क्या है, प्रमाण क्या है, ये सब साक्षी और प्रमाण किसी ने पूछ लिया कदाचित तो उसको बताना तो पड़ेगा, तो क्या करें। तो कहते हैं स्वर्ग लोक में कामधेनु गाय उनको मिल गए, उन्होंने कहा कामधेनु गाय तू चल मेरे साथ, कहां, बोले नीचे चलते ही पृथ्वी लोक में विष्णु के और हम बीच में झगड़ा हुआ है, जो सबसे पहले पता लगाकर आएगा वो बड़ा होगा, ये शर्त है, हमको बड़ा होना है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं, तुम भी साथ में चलो। यदि प्रश्न हुआ कि कौन साक्षी है, हम ये कहेंगे कि हमने पता लगाया है अंत का, कौन साक्षी कौन प्रमाण है, तो तुम बोल देना कि हाँ हम दिखाएंगे ये प्रमाण है, तो बोले हाँ इसने पता लगाया, तो तुमको बोलना पड़ेगा हाँ। तो गाय ने कहा कि नहीं महाराज, हम ऐसा झूठ नहीं बोल सकते। तो बोले यदि तुम मेरे लिए मेरे लिए तुम झूठ नहीं बोलोगे तो मैं ब्रह्मा हूं, तुमको उत्पन्न किया हमने, अभी श्राप देकर तुमको यहीं नष्ट कर देते हैं, धमकी दिया, साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, वही धमकी दिया। तो अब गाय ने विचार किया, इसके हाथों से, इस अहंकारी के हाथों से मरने के अच्छा तो भले वहां जाएंगे, वहां विष्णु का भी दर्शन हो जाएगा, शिव का भी दर्शन हो जाएगा, तो जाते हैं कोई बात नहीं। उसके पीछे पीछे आ गई और एक और प्रमाण लिया केतकी को, फूल को, दो तीन प्रमाण ब्रह्मा जी ने तैयार करके लेके आ गए, परंतु विष्णु तो उससे पहले ही वहीं आके बैठे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बाजी मार गया, मर गया, बताओ है, ये तो पता लगा कि नीचे कहां से शुरू हुआ है, आदि का पता लगाकर आ गया है, अब इसी को बड़ा मानना पड़ेगा भाई, अरे गया, चौपट हो गया महाराज, आमने सामने हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या तुम पता लगा के आए हो कहां से नीचे से शुरू हुआ है, आदि का पता लगाकर आए हो, फट से पूछ लिया। विष्णु ने कहा कि नहीं महाराज, हमको तो पता ही नहीं चला, हम गए जाते हैं, जितने जाते हैं उतने ही आगे है, जितने आगे जाते हैं उतने ही आगे बढ़ता है, जैसे प्रातः काल सूर्य उदय होता हो पूर्व दिशा से और आप पश्चिम दिशा तरफ मुख करके खड़े हों बाहर और आपकी परछाई आपके सामने लेटी हो और आप चाहें कि उस मेरी परछाई जो मेरे सामने लेटी है उसके हृदय में मैं पांव रख दूं, तो जितना आगे बढ़ोगे वह परछाई उतनी आगे बढ़ती जाएगी, तीन काल में तुम उस परछाई के पांव में, हृदय छाती में पांव नहीं रख पाओगे, ये तो ऐसे ही और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, और तुम उसको पांव में, हृदय में पांव रखूंगा ये संकल्प छोड़कर वहीं खड़े रह जाओ, दिन के 12 बजे तक वह धीरे धीरे तुम्हारे नजदीक आता है, और उसके हृदय का उसका सारा जीवन तुम्हारे चरण में आकर गायब हो जाता है। होता है कि नहीं बोलो? हाँ। और वहीं धैर्यपूर्वक खड़े रहोगे तो वो चरण में तो रहेगा, चरण से भी पीछे निकल के चला जाएगा, तुम्हारे आगे कभी भी नहीं आएगा। यही तो संत वो है, संसार को देखकर संसार को खोजने के लिए नहीं दौड़ते। संसारी हुआ है कि संसार को देखकर संसार को खोजता है, ब्रह्म को नहीं खोजता। और संत वो है कि संसार को देखकर ब्रह्म को खोजता है। संसार को खोजने जाओगे तो ये संसार तो छाया की तरह और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, इसका अंत ही नहीं। महात्मा ने विचार किया कि खड़े हो जाओ एक जगह और क्या, तब फिर वह उसी के चरण में सब आ जाता है। चरण में तो क्या आएगा, वो चरण से भी पीछे छूट जाएगा संसार, संसार पीछे हो जाएगा, आगे तो उसका अपना स्वरूप प्रकट होगा। तुम्हारे आगे अपना स्वरूप क्यों प्रकट नहीं होता? क्योंकि तुम्हारे आगे संसार खड़ा है, और संसार को महत्व देकर संसार को खोजने लगे हो तो फिर परमात्मा कहां से खड़ा होगा? विष्णु ने कहा कि नहीं महाराज, हमको तो पता नहीं है, हम तो हार गए हैं भाई। तो ब्रह्मा को लगा कि हां चांस है अभी भी बड़ा होने का, अपना अब पुड़िया खोल लो भाई। विष्णु ने कहा कि आपने पता लगा लिया? हां और क्या, पता लगा लिया। कहां इसका अंत हुआ है? अरे कहां बताएं, एक जगह अंत हुआ, हम वहां पहुंचे, वहां अंत था, हम वहां से लौट कर आ गए, उसके आगे तो कुछ भी नहीं था। भगवान विष्णु को लगा कि ये तो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, पूछ लेते हैं भाई, तुमने अंत का पता लगाया तो कोई साक्षी भी है, प्रमाण भी है? बोले क्यों नहीं है, ये देख लो दो दो प्रमाण है, इनसे पूछ लो। आप तो कामधेनु गाय भी कांपने लग गई, केतकी भी कांपने लग गया, अब मर गए। चलो जो कुछ भी, अब मरना तो था ही, ब्रह्मा के हाथ से, अहंकारी के हाथ से मरने की अपेक्षा इन्हें विष्णु के हाथ से मर जाएं तो वही ठीक है, हमारा उद्धार हो जाएगा। विष्णु ने कामधेनु गाय को बोला, इधर आओ। हाँ। बोलो, इसने पता लगाया है, उधर ब्रह्मा है। तो कामधेनु गाय ने विचार किया, सर्प भी मरे लट्ठी भी न टूटे, है ना, कोई उपाय तो करना चाहिए। तो विष्णु की तरफ पूंछ करके, पूंछ हिलाकर कह दिया कि ये कोरी कल्पना है, झूठा है ये बुढ़ा। और ब्रह्मा की तरफ मुंह करके कहता हां। ब्रह्मा समझने लगा मेरे पक्ष में, इसने मेरे पक्ष में बयान दिया है, माफ हो गया, एकदम प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। हां। अब पीछे से पूंछ हिलाकर कह दिया, नहीं ये कोरी झूठ है। ब्रह्मा विष्णु जी समझ गए। तब कहा भगवान विष्णु ने, शिव ने, शिव प्रकट हुए, कहा कि तूने मुख से हां किया इसलिए वो अपवित्र है, अशुद्ध हो गया, क्योंकि झूठ पापक ने निवास कर लिया तेरे मुख में, इसलिए तेरा मुख पवित्र नहीं है। लेकिन तुमने सत्य का आश्रय लिया इसलिए पूछर तुम्हारा पूछ सत्य है, पवित्र है। केसी के कारण से संसार के जीव वैतरणी से तर जाएंगे, इसके तेरे इस पूंछ के आसर लेंगे। तो वैतरणी माने संसार, पूंछ माने सत्य, पूंछ माने ब्रह्म विद्या। यहां पूंछ का अर्थ है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का आश्रय जो, क्योंकि ब्रह्म विद्या ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ज्ञान ही सत्य है, आत्मज्ञान ही यथार्थ है। और वो सत्य को, यथार्थ को, सत्य को पूछर के रूप में, पूंछ के, गाय के पूंछ के रूप में प्रतीक बनाया गया है, और ये बना दिया है कि तुम्हारे आश्रय से सब संसार से तर जाएंगे, और लौकिक व्यक्ति वैतरणी तर जाएंगे गाय के पूछर को समात कर पकड़कर, और वेदांती लोग ब्रह्म विद्या को पकड़कर भवसागर तर जाएंगे। तब से लेकर गाय के पूंछ संकल्प करके आज तक सत्य कर्म, सत्कर्म करने के लिए सत्य के आश्रय लेने वाले जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं वो सब गाय के पुछर को समस पकड़कर अपने शुभ कर्म करते हैं। ब्रह्मा भगवान शिव प्रकट हुए और विष्णु को तो कहा कि क्योंकि तुमने झूठ नहीं बोला, असत्य का आश्रय नहीं लिया, इसलिए इस तीनों लोक में तुम पूज्य होगे। और ब्रह्मा को कहा तुमने झूठ का आश्रय लिया। तो ब्रह्मा जी पहले पंचमुखी थे, भगवान शिव ने ऊपर का एक मुख काट दिया और चार मुख वाले हो गए और श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु लोक में प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। तो आज तक वही हुआ है। उस प्रसंग पर यहां ये श्रुति ने संकेत किया है, नैनमूर्धम न तीर्यम च न मध्य परिजग्रवत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत यशः। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।